आप सुन रहे हैं महाभारत के पात्र सर ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अनामय वर्मा के साथ। महाभारत में पांडु पुत्र नकुल दैवीय चिकित्सक अश्विनी कुमारों के वरदान से माता माद्री के गर्भ से जन्मे असमान जुड़वा पुत्रों में से एक थे। महाराज पांडु की अकस्मात मृत्यु के बाद रानी माद्री ने आत्मदाह कर लिया था। नकुल से मां का विरह सहा नहीं जा रहा था, वे अत्यंत दुखी रहने लगे थे। इसीलिए नकुल भाइयों के साथ हस्तिनापुर चले गए। वहां माता कुंती ने ही उनका पालन पोषण किया। माता कुंती नकुल को अपने पुत्रों की तरह ही प्यार करती थी। तलवार चलाने में अत्यंत दक्ष हुए थे, क्योंकि बचपन में नकुल ने अपने पिता महाराज पांडु और संत श्रृंग आश्रम में शुक नामक एक साधु से तलवार चालन के कौशल सीखे थे। आगे चलकर नकुल ने गुरु द्रोणाचार्य के संरक्षण में धनुष और तलवार चलाने के कौशल में और भी सुधार किया। कुलगुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य द्वारा अन्य पांडव भाइयों के साथ नकुल को भी धर्म, विज्ञान, प्रशासन और सैन्य कला में प्रशिक्षित किया गया। नकुल नाम का अर्थ होता है जो प्रेम से परिपूर्ण हो। महाभारत में नकुल को एक बहुत ही रूपवान, प्रेम युक्त राजकुमार के रूप में बताया गया है। नकुल सुंदर रूपवान व्यक्ति थे। उनके सुंदर व्यक्तित्व की तुलना काम और प्रेम के देवता कामदेव से की गई है। इस नाम की 9 पुरुष विशेषताएं हैं: बुद्धिमत्ता, सकेंद्रित, परिश्रमी, रूपवान, स्वास्थ्य, आकर्षकता, सफलता, आदर और शर्त रहित प्रेम। कुरु वंश में नकुल को सबसे सुंदर पुरुष के रूप में जाना जाता है। नकुल घुड़सवारी की कला में भी पारंगत थे और इसमें उनकी ख्याति दूर देशों तक फैली थी। नकुल की घुड़सवारी की एक विशेषता थी कि वे वर्षा में बिना जल को छुए घुड़सवारी कर सकते थे। नकुल एक योग्य पशु शल्य चिकित्सक थे। उन्होंने घुड़ चिकित्सा में महारत पाई थी और वे घुड़ प्रजनन के भी विशेषज्ञ थे। इसीलिए अज्ञातवास के समय नकुल राजा विराट की राजधानी उपल्लव की घुड़शाला में भेष बदलकर ग्रंथिक नाम से घोड़ों की देखभाल करने वाले सेवक के रूप में रहे। राजा विराट के साथ बातचीत में नकुल ने घोड़ों की सभी बीमारियों के उपचार की कला जानने की बात कही थी। नकुल एक कुशल सारथी भी थे। अज्ञातवास के एक प्रसंग में इसका उल्लेख मिलता है कि पांडवों के 12 वर्ष वनवास में बिताने के बाद अज्ञातवास के समय जब युधिष्ठिर ने नकुल से पूछा कि नकुल, तुम राजा विराट के राज्य में कौन सा कार्य करते हुए निवास करोगे, क्योंकि तुम शूरवीर होने के साथ ही अत्यंत रूपवान और सदा सुख भोगने के योग्य हो, ऐसे में राजा विराट के राज्य में तुम्हारा कार्य क्या होगा? तब नकुल कहते हैं, राजन, मैं अश्व विज्ञान से संपन्न तथा घोड़ों की रक्षा के कार्य में कुशल हूं। मैं राजा विराट के यहां ग्रंथिक नाम से अश्वबंध होकर रहूंगा। घोड़ों की देखभाल का कार्य मुझे अत्यंत प्रिय है। घोड़ों को भांति भांति की चालें सिखाने के अतिरिक्त उनकी चिकित्सा में भी मैं निपुण हूं। राजा विराट के नगर में मेरा यही परिचय होगा। अज्ञातवास के समय नकुल स्वयं को कौरवों से छुपाए रखने के लिए शरीर पर धूल का लेप लगाकर रहते थे। अश्विनी कुमारों के पुत्र होने के नाते नकुल को आयुर्वेद का भी विशेषज्ञ माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नकुल की पहली पत्नी द्रौपदी थी, जिनसे उन्हें शतानिक नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। द्रौपदी के अतिरिक्त नकुल ने चेदीराज की पुत्री करेणुमती से विवाह किया था। करियणुमती से जन्मे उनके पुत्र का नाम निर्मित्र था। माना जाता है कि नकुल चंद्रवंशी होकर भी यदुकुल के थे। मद्र देश के राजा शल्य नकुल के मामा थे। राजा शल्य श्री राम के कुल से थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में राजा शल्य कौरवों की ओर से लड़े थे। युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया था, तब नकुल ने पश्चिम की ओर जाकर महेतत और पंचन आदि देशों को परास्त किया था। उसके बाद इन्होंने द्वारका में दूत भेजकर वासुदेव से भी युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकृत कराई थी। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण अर्जुन के हाथों मारा गया था। उस रात दुर्योधन अपने परम मित्र की मृत्यु का शोक मना रहा था। ऐसे में पितामह भीष्म उसे समझाते हुए कहते हैं,
युद्ध का दुष्परिणाम देख रहे हो दुर्योधन, तुमने आज कर्ण जैसा मित्र खो दिया है। अब हट छोड़ो, इस युद्ध को यही विराम दो, मान जाओ।
लेकिन दुर्योधन पितामह की बात नहीं मानता। वो कहता है,
मैं अपने सगे संबंधियों और परम मित्र कर्ण की मृत्यु को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा पितामह, मैं पांडवों का सर्वनाश कर दूंगा।
ऐसे समय में अश्वत्थामा और धूर्त शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहते हैं,
युद्ध में हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, तुम युद्ध करो पुत्र दुर्योधन।
दुर्योधन अश्वत्थामा को अपना सेनापति बना देता है, जबकि अश्वत्थामा ने पांडवों को धर्म से हो या अधर्म से, जैसे भी हो, मारने की प्रतिज्ञा ली थी। फिर भी वो सेनापति नहीं बनता, क्योंकि उससे पहले राजा शल्य उस स्थान के लिए योग्य थे। तब राजा शल्य को सेनापति बना दिया जाता है। अगले दिन जब युद्ध शुरू होता है, तो नकुल और शकुनी का आमना सामना हो जाता है। नकुल को इसी घड़ी की प्रतीक्षा थी। नकुल और शकुनी में घमासान चलता है। काफी देर तक लड़ते लड़ते आखिर जब शकुनी का सारथी मारा जाता है, तो नकुल के क्रोध और आवेग से घबराकर शकुनी घिघियाने लगता है। तब नकुल शकुनी को उसका एक एक पाप याद दिलाते हैं और अपने बाणों से घायल करते जाते हैं। शकुनी लगातार क्षमा याचना करता है, पर अंततः नकुल शकुनी का वध कर देते हैं। युद्ध के 18वें दिन तो नकुल अपने तलवार कौशल का ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि शत्रु पक्ष में हाहाकार मच जाता है। उस दिन नकुल कर्ण के एक के बाद एक तीनों पुत्र सुषेण, सत्यसेन और प्रसेन का वध कर देते हैं। लेकिन अंतिम दिन रात्रि में अश्वत्थामा पांडव शिविर में घुसकर द्रौपदी से जन्मे पुत्र शतानिक की सोते समय हत्या कर देता है। नकुल के दूसरे पुत्र निर्मित्र, जो कि उनकी दूसरी पत्नी करेणुमती से जन्मा था, उसकी तो कर्ण ने पहले ही हत्या कर दी थी। इस तरह युद्ध में नकुल के दोनों ही पुत्र वीर गति को प्राप्त होते हैं। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने छोटे भाई नकुल को उत्तरी मद्र देश का राजा नियुक्त कर दिया था। जैसा कि ज्ञात है, स्वर्गारोहण के समय युधिष्ठिर को छोड़कर सभी पांडव शिथिल पड़ गए थे, यानी कमजोर हो गए थे। द्रौपदी और सहदेव के बाद नकुल भी गिर गए थे। ऐसे में जब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भ्राताश्री नकुल क्यों गिरा, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, नकुल को अपने सुंदर होने पर अत्यंत गर्व रहा है। उसका ऐसा मानना है कि उससे अधिक रूपवान पुरुष कोई नहीं हुआ। ये अहंकार है।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा, सुनना जरूरी है।